एकत्रा ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, माइकल पॉलिन की द ओमनीवोर्स डायलेमा।
हाँ, इसका हिंदी में मतलब हुआ सर्वाहारी की दुविधा।
हाँ, और ये किताब एक ऐसा सवाल उठाती है जो शायद हम सबके मन में रोज आता है, खासकर जब हम कुछ खाने का सोचते हैं या खरीदते हैं कि भाई खाएं तो खाएं क्या।
बिल्कुल, आज बाजार में इतने सारे विकल्प हैं, इतने दावे हैं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, लो फैट, पता नहीं क्या क्या, तो सही चीज चुनना वाकई एक पहेली जैसा हो गया है।
सही कहा। और ये किताब सिर्फ सेहत के बारे में नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे उगता है, और उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर, पर्यावरण पर क्या पड़ता है।
और आज के जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम अपने खाने की जड़ों से जैसे कट से गए हैं।
हाँ बिल्कुल, ये किताब उसी दूरी को, उसी अनजानपन को समझने और शायद थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। तो जिन्होंने ये किताब लिखी है, माइकल पॉलिन, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो अमेरिका के काफी जाने माने लेखक हैं, पत्रकार हैं और यूसी बर्कले में पढ़ाते भी हैं।
अच्छा।
उनका खास काम भोजन, खेती और प्रकृति, इनके आपस के रिश्तों को समझने पर है।
और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो सिर्फ पढ़कर या सुनकर नहीं लिखते, वो खुद उस चीज का अनुभव करते हैं।
हाँ, यही उनकी खासियत है। मतलब वो किसी फार्म पर जाकर काम भी कर लेंगे, किसी फैक्ट्री में खाने की प्रोसेसिंग भी देख लेंगे।
अरे वाह, मैंने सुना है उन्होंने शिकार करना और जंगल से खाना इकट्ठा करना भी सीखा है इस किताब के लिए।
जी हाँ बिल्कुल, वो खुद अनुभव करके लिखते हैं और इसीलिए उनकी बातें इतनी असरदार और जीवंत लगती हैं।
और उनका नजरिया भी काफी संतुलित लगता है। मतलब वो सिर्फ आलोचना नहीं करते।
सही कहा।
वो औद्योगिक खेती की कमियां तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझते हैं कि भाई दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को खिलाना कोई मजाक नहीं है।
सही बात है।
और उनकी लिखने की शैली भी ऐसी है जैसे कहानी सुना रहे हो।
मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं।
तो ये ओमनीवोर की दुविधा, ये शब्द का मतलब क्या है असल में?
देखिए, ओमनीवोर का मतलब है सर्वाहारी, यानी ऐसा जीव जो पौधे और जानवर दोनों खा सकता है, जैसे इंसान।
अच्छा, हम लोग।
हाँ, और दुविधा ये है कि जब आपके पास खाने के लिए ढेरों विकल्प हो, मतलब आप कुछ भी खा सकते हो, तो आप कैसे तय करेंगे कि क्या खाना सही है?
ये तो है।
पुराने जमाने में क्या था कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा परिवार, ये सब हमें गाइड करते थे कि क्या खाना है क्या नहीं।
सही बात है।
जैसे हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से खाना बनता था। बिल्कुल, लेकिन आज खासकर पश्चिमी देशों में और अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी वो मार्गदर्शन कम हो गया है। सुपरमार्केट में चीजें भरी पड़ी हैं और हम बस कंफ्यूज्ड हैं।
तो पॉलिन इसी कंफ्यूजन को कैसे सुलझाते हैं?
वो हमें चार अलग अलग भोजन यात्राओं पर ले जाते हैं। ये यात्राएं असल में चार अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं हैं, फूड चेन्स।
फूड चेन्स मतलब वो रास्ते जिनसे खाना खेत से हमारी प्लेट तक आता है।
हाँ बिल्कुल वही। और हर रास्ता हमें हमारे खाने के बारे में और दुनिया के बारे में कुछ नया सिखाता है। ये यात्राएं दिखाती हैं कि हम अपने खाने से कितने अनजान हो गए हैं और इसके नतीजे क्या हो रहे हैं।
अच्छा, तो पहली यात्रा कौन सी है?
पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली है औद्योगिक खाद्य श्रृंखला, और इस श्रृंखला का राजा है मक्का। कौन?
मक्का, भुट्टा, वो कैसे?
हाँ वही भुट्टा। पॉलिन बताते हैं कि कैसे अमेरिकी सरकार की नीतियों और सब्सिडी की वजह से मक्का इतना ज्यादा और इतना सस्ता उगाया जाने लगा कि वो आज हर चीज में है, खेतों से लेकर सुपरमार्केट तक, फास्ट फूड तक, हर जगह।
हर चीज में मतलब?
पॉलिन आयोवा के किसान जॉर्ज नेलर से मिलते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पूरा सिस्टम उन्हें ज्यादा से ज्यादा मक्का उगाने पर मजबूर करता है, चाहे इसे जमीन खराब हो या खूब सारे केमिकल्स और डीजल लगें।
ओह।
और फिर ये मक्का जाता है बड़े बड़े फीड लॉट्स में। ये वो जगह है जहां जानवरों को, खासकर गायों को, जल्दी मोटा करने के लिए रखा जाता है। और उन्हें खिलाया क्या जाता है? मक्का।
गायों को मक्का, लेकिन गायें तो घास खाने के लिए बनी है ना?
बिल्कुल, यही तो समस्या है। ये उनके लिए एकदम अप्राकृतिक है, इससे वो बीमार पड़ती हैं और फिर उन्हें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं।
बाप रे।
और कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मक्के से बनता है हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप, HCFC। ये मक्के से बनी एक बहुत ही सस्ती मीठी चीज है।
हाँ, सुना है इसके बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है शायद?
कोल्ड ड्रिंक्स, केचप, जैम, ब्रेड, डिब्बा बंद सूप, आप नाम लीजिए, शायद उसमें HFCs मिल जाए।
पॉलिंजर मैकडोनल्ड्स का खाना खाते हैं, बर्गर, फ्राइज, नगेट्स, सोडा, यहाँ तक कि सलाद ड्रेसिंग, तो उन्हें पता चलता है कि लगभग हर चीज में किसी न किसी रूप में मक्का है।
ये तो अविश्वसनीय है, मतलब एक ही चीज हर खाने में?
हाँ, ये पूरा सिस्टम बस मुनाफे और स्पीड पर चलता है। पोषण, पर्यावरण, जानवरों की भलाई, ये सब बातें पीछे रह जाती हैं, और ये सब होता है हमारी नजरों से दूर, पर्दे के पीछे
छुपा रहता है। बिल्कुल।
और इसके बाद पॉलिन हमें कहाँ ले जाते हैं, ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है।
हाँ ये है, लेकिन इसके बाद वो दो ऐसे रास्ते दिखाते हैं जो प्रकृति के ज्यादा करीब होने का दावा करते हैं। इन्हें वो पास्टोरियल या चारागाह आधारित कहते हैं, लेकिन यहाँ भी जैसा आपने कहा एक पेंच है।
अच्छा, क्या पेंच है?
पहला रास्ता है बिग ऑर्गेनिक, या जिसे हम कह सकते हैं बड़े पैमाने की जैविक खेती। होल फूड्स जैसे बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक लेबल वाला सामान खूब बिकता है।
हाँ, आजकल ऑर्गेनिक का चलन बहुत बढ़ गया है।
बिल्कुल, लेकिन पोलन सवाल उठाते हैं कि ये जो बड़े बड़े फार्म हैं जो सुपरमार्केट के लिए ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, क्या वो वाकई ऑर्गेनिक के असली सिद्धांतों जैसे मिट्टी का ख्याल रखना, जानवरों को अच्छा माहौल देना, स्थानीय होना को निभा पा रहे हैं?
शायद नहीं।
अक्सर नहीं। पोलन पाते हैं कि कई बार ये बड़े ऑर्गेनिक फार्म भी औद्योगिक तरीकों की ही नकल करते हैं। वही एक ही फसल उगाना, दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करना, जानवरों को बस नाम के लिए थोड़ी खुली जगह देना। वो इसे सुपरमार्केट पैस्टोरल कहते हैं, मतलब सुपरमार्केट में बेचा जाने वाला एक खूबसूरत सपना जो शायद पूरी तरह सच न हो।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक का ठप्पा देख लेना काफी नहीं है, ये भी जानना पड़ेगा कि उगाया कैसे गया है।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के उलट पोलन हमें एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला मॉडल भी दिखाते हैं, वर्जीनिया का पॉलीफेस फार्म।
पॉलीफेस फार्म, ये कैसा है?
यहाँ जोएल सैलेटन नाम के एक किसान हैं। वो खुद को घास का किसान कहते हैं, मिट्टी का नहीं, और उसका फार्म कमाल का है।
कैसे?
वहाँ सब कुछ प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है। जैसे गायें घूम घूम कर घास चरती हैं, उनके जाने के बाद उनके पीछे पीछे मुर्गियाँ आती हैं, खास तरह के एग मोबाइल में। वो गाय के गोबर में से कीड़े चुनकर खाती हैं और साथ ही गोबर को फैलाकर खाद बनने में मदद करती हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है।
हाँ, फिर सुअर हैं जो जंगल में छोड़े जाते हैं और वो जमीन को खोदकर खाद को हवा लगने में मदद करते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्रकृति का एक चक्र है जो वहाँ काम करता है।
तो यहाँ जानवरों के साथ कैसा बर्ताव होता है? उन्हें उनकी मर्जी से जीने दिया जाता है?
हाँ, सैलेटिन इसी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं जानवर को उसकी प्रकृति के हिसाब से जीने देना चाहिए, सुअर का सुअरपन या मुर्गी का मुर्गीपन बना रहना चाहिए। और नतीजा, जमीन साल दर साल बेहतर होती जा रही है। कोई केमिकल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खेती जमीन को खराब करने के बजाय उसे सुधार रही है, उसे पुनर्जीवित या रिजनरेटिव कर रही है।
ये तो वाकई कमाल है, लेकिन क्या ये मॉडल बड़े पैमाने पर काम कर सकता है?
यही पोलिन भी कहते हैं, ये मॉडल बहुत ज्यादा ज्ञान, ध्यान और मेहनत मांगता है। इसे आप किसी फैक्ट्री की तरह कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये स्थानीय परिस्थितियों पर बहुत निर्भर करता है।
समझ गई। तो एक तरफ वो छुपा हुआ नुकसानदेह औद्योगिक सिस्टम है, और दूसरी तरफ ये पॉलीफेज जैसा टिकाऊ मॉडल जो पारदर्शी है, फायदेमंद है, लेकिन शायद हर जगह लागू करना मुश्किल है। तो चौथी खाद्य श्रृंखला कौन सी बची?
चौथी और आखिरी श्रृंखला सबसे सीधी है, सबसे पुरानी, व्यक्तिगत, पर्सनल, यानी सीधे प्रकृति से, जंगल से या खुद उगाकर भोजन हासिल करना।
अच्छा, जैसे पुराने जमाने में लोग करते थे।
हाँ, कुछ वैसा ही। पोलन खुद इसका अनुभव करते हैं। पहले वो बनते हैं शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर। वो कैलिफोर्निया में विशेषज्ञों के साथ जंगली मशरूम ढूंढना सीखते हैं।
ओहो, इसमें तो बहुत जानकारी चाहिए होगी, है ना? कौन सा खाने लायक है, कौन सा नहीं।
बिल्कुल, प्रकृति का बहुत गहरा ज्ञान चाहिए इसके लिए। फिर वो शिकार करना सीखते हैं एक जंगली सुअर का। ये उनके लिए बहुत मुश्किल अनुभव होता है, भावनात्मक रूप से भी, किसी जानवर की जान लेना।
हाँ, ये आसान नहीं होगा।
लेकिन पोलन का तर्क है कि ये सुपरमार्केट से प्लास्टिक में लिपटा मांस खरीदने से ज्यादा ईमानदार है। कम से कम आप उस सच्चाई का सामना तो करते हैं कि आपका भोजन एक जीवित प्राणी था। आप उस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं।
बात तो सोचने वाली है। ये हमें भोजन के स्रोत से सीधे जोड़ता है, बिना किसी पर्दे के।
हाँ, और किताब का अंत होता है एक उत्तम भोजन के साथ। पोलन एक ऐसा खाना बनाते हैं जिसकी हर एक चीज का स्रोत उन्हें पता है। शिकार किया हुआ सुअर, जंगल से लाए गए मशरूम और सब्जियां, कुछ चीजें जो उन्होंने खुद उगाई।
वाह,
हर निवाले की एक कहानी है। ये खाना उस ओमनीवोर की दुविधा का एक तरह से जवाब है, ज्ञान और जुड़ाव। ये दिखाता है कि भोजन के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, भले ही आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब ऐसा ना कर पाएं।
तो इन चारों यात्राओं से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली बात तो यही लगती है कि हम खाने वाले और हमारे भोजन के स्रोत के बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ गई है।
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शायद हम जानते ही नहीं कि हमारी थाली में जो खाना है वो कहाँ से आया, कैसे बना, और ये अज्ञानता ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसी की आड़ में वो सारे हानिकारक तरीके चलते रहते हैं।
सही कह रहे हैं, हम दुकान से दूध का पैकेट तो ले आते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि वो गाय कहाँ थी, उसने क्या खाया होगा।
हाँ, और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा मुद्दा, औद्योगिक खेती का पर्यावरण पर भयानक असर। सिर्फ एक या दो फसलें जैसे मक्का या सोयाबीन बड़े बड़े खेतों में बार बार उगाने से मिट्टी की जान निकल जाती है। पानी प्रदूषित होता है और इसमें इतना ज्यादा जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल डीजल लगता है। हमारे देश में भी तो खेती से जुड़ी समस्याएं हैं, पानी की कमी, पराली जलाने से प्रदूषण, मिट्टी की सेहत गिरना, ये सब कहीं ना कहीं उसी औद्योगिक सोच का नतीजा है।
और पॉलीफेस फार्म जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि खेती पर्यावरण को बेहतर भी बना सकती है खराब करने के बजाय।
बिल्कुल, और एक और बहुत जरूरी बात है, सस्ते खाने का भ्रम।
सस्ते खाने का भ्रम, वो कैसे?
हमें लगता है सुपरमार्केट का प्रोसेस्ड खाना सस्ता है, पैकेट उठाया, पैसे दिए, हो गया। लेकिन पोलन बताते हैं कि इसकी असली कीमत बहुत ज्यादा है।
कैसे?
वो कीमत हम चुकाते हैं टैक्स के पैसों से दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में, बीमारियों पर होने वाले खर्च के रूप में जैसे मोटापा, डायबिटीज, जो प्रोसेस्ड फूड से जुड़ी हैं, और पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके रूप में। ये सब छिपी हुई लागतें हैं जो हमें सीधे तौर पर नजर नहीं आती।
अच्छा, मतलब वो जो सस्ता दिख रहा है वो असल में सस्ता है नहीं, ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, और आखिर में ये किताब हमें याद दिलाती है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये एक कृषि कार्य है और एक नैतिक कार्य भी है।
नैतिक कार्य?
हाँ, हम जो भी खरीदते हैं हम एक खास तरह की खेती, एक खास तरह के सिस्टम को अपना समर्थन दे रहे होते हैं। हमारा हर चुनाव, हर खरीदारी एक वोट की तरह है। अगर हम सोच समझकर चुनेंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं।
पोलन की कुछ बातें ना दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे वो कहते हैं कि जिस तरह से हम खाते हैं वो प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारा सबसे गहरा जुड़ाव दर्शाता है। कितना सच है ये।
हाँ बिल्कुल, हमारे खाने के तरीके बताते हैं कि हम प्रकृति को कितना महत्व देते हैं।
और एक बात जो मुझे बहुत चुभी वो ये कि कैसे औद्योगिक खाद्य प्रणाली को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हम अंधेरे में रहें, सवाल ना पूछें, ये दूरी पैदा की गई है।
सही कहा, ताकि हम बिना सोचे समझे खाते रहें। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉलीफेस फार्म जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि खेती विनाशकारी होने के बजाय सुधारक, रीजनरेटिव भी हो सकती है। वो जमीन को, हमारी सेहत को, अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकती है।
हाँ, ये उम्मीद देती है।
और हाँ, वो जो ओमनीवोर की दुविधा है उसका निचोड़ ही यही है कि आज खाने के इतने सारे विकल्प होने की वजह से सही चुनाव करना आसान नहीं हुआ, बल्कि और मुश्किल हो गया है। बिना किसी पारंपरिक गाइडेंस के हम विज्ञापनों और झूठे दावों के जाल में फंस जाते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को जानकर हम करें क्या, अपनी रोज की जिंदगी में इस दुविधा से कैसे निपटें?
हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। पोलन कुछ रास्ते सुझाते हैं। पहला, सुपरमार्केट में थोड़ी जासूसी करें।
जासूसी? हम मतलब
पैकेट को पलट कर देखिए कि उसमें क्या क्या डाला गया है। अगर लिस्ट बहुत लंबी है या उसमें ऐसे नाम हैं जो आप बोल भी नहीं सकते।
हाँ, कई बार तो अजीब अजीब से केमिकल नाम होते हैं।
बिल्कुल, या फिर हर दूसरी चीज में मक्का या मक्के से बनी चीजें जैसे HFCS, कॉर्न स्टार्च, माल्टोडेक्सट्रिन ही दिखें, तो समझ जाइए कि ये औद्योगिक खाना है। पोलन का एक मजेदार नियम है
जी,
वो चीजें खाएं जिन्हें आपकी परदादी पहचान सकती हों।
हाँ, ये बढ़िया नियम है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं?
दूसरा, अपनी थाली से वोट करें, मतलब अपने पैसे सोच समझ कर खर्च करें। जहां तक हो सके स्थानीय किसानों से खरीदें, मंडी से खरीदें, या सीधे उनसे जुड़ें।
लोकल खरीदना।
हाँ, पैकेट बंद प्रोसेस्ड खाने की जगह साबुत अनाज, ताजे फल, सब्जियां चुनें, अपने खाने में विविधता लाएं।
ये भी सही है। और तीसरा?
तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका, खुद खाना बनाना सीखें और बनाएं।
घर पर खाना बनाना
ते हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। ये आपको अपने भोजन से जोड़ता है, आप उस औद्योगिक प्रक्रिया को उलट देते हैं। घर का बना खाना इस दुविधा का सबसे अच्छा हल है।
बात तो सही है, घर के खाने की बात ही अलग होती है। और चौथा?
चौथा है मूल्य यानी वैल्यू की अपनी परिभाषा बदलें। सिर्फ ये न देखें कि सबसे सस्ती कैलोरी कहाँ मिल रही है, पोषण देखें, स्वाद देखें और ये देखें कि वो खाना कैसे उगाया गया है, क्या वो तरीका नैतिक है, टिकाऊ है। पोलन कहते हैं, ज्यादा दाम चुकाएं, कम खाएं, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले सही तरीके से उगाए गए भोजन पर शायद थोड़ा ज्यादा खर्च करें, लेकिन कुल मिलाकर शायद कम खाएं और बेहतर खाएं। ये अपनी सेहत, पर्यावरण और एक बेहतर खाद्य प्रणाली में एक तरह का निवेश है।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि मक्का मतलब भुट्टा हमारी खाने की दुनिया पर इस कदर हावी है और हमें पता भी नहीं चलता। और साथ ही पॉलीफेस फार्म जैसी जगहों के बारे में जानना ये बहुत उम्मीद देता है कि चीजें अलग तरीके से भी हो सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये रही कि हम रोज जो खाते हैं, हमारे वो छोटे छोटे चुनाव कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, अपने खाने की कहानी जानना, ये पूछना कि ये कहाँ से आया है, ये हमें सिर्फ एक ग्राहक से ज्यादा एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। ये हमें प्रकृति से, अपने आसपास के लोगों से दोबारा जोड़ सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।